मैं सुशांत हूँ, वर्धमान महा पितरे हमारे संसार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, उसमें सुखाधिकार चल रहा है। गाथा गुण 59 पीछे से कहते आ रहे हैं कि परोक्ष ज्ञान है, उसका संबंध इंद्रिय सुख से है। इंद्रिय ज्ञान का संबंध इंद्रिय सुख से है, अतीन्द्रिय ज्ञान का संबंध अतीन्द्रिय सुख से है। अब इसमें निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि पारमार्थिक सुख माने असली सुख, तो प्रत्यक्ष ज्ञान वाले की ही है। प्रत्यक्ष माने महाप्रत्यक्ष, वो केवल ज्ञान वाला प्रत्यक्ष, उसके जिसके अतीन्द्रिय ज्ञान है उसके वास्तविक सुख है। गाथा में इतनी बात ही कही है और टीका में फिर अतीन्द्रिय ज्ञान वाले सारे विशेषणों के साथ में क्यों है उसमें सुख सहित सिद्ध किया है, और फिर परोक्ष ज्ञान वालों को क्यों नहीं है उसमें भी हेतु देकर के सिद्ध किया है। फिर निष्कर्ष निकाला है, इस तरह उतनी सी ही बात को रिपीट करके तीन तरह से व्यक्त किया है। देखो पढ़ो, जादम
से सर्वांग से सर्वाथ ग्राही मल रहे अब ग्राति विरेत ज्ञान सुख कहा जिन वर देव ने।
जो स्वयं से उत्पन्न हुआ, सर्वांग से हुआ, मतलब जैसे अपने आंख से देखते हैं कान से सुनते हैं, ऐसा नहीं है। आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं, तो हर प्रदेश से उनका ज्ञान होता है। वो सर्वांग से, स्वयं से, सर्वांग से और सर्वार्थ ग्राही, संपूर्ण पदार्थों को एक साथ ग्रहण करने की सामर्थ्य वाला, और मल रहित, घटार घाटिया क्रम रूपी मल से रहित है, और अवग्रहादि विरहित, अवग्रह ही अवाय धारणा जैसा क्रमिक ज्ञान नहीं होता है। ऐसा ज्ञान ही वास्तव में जिनवर देव ने उसे ही सुख कहा है। अब इसको ज्ञान और सुख को अभेद न से एक ही कह दिया, चाहे अतीन्द्रिय ज्ञान कहो चाहे अतीन्द्रिय सुख कहो, एक ही बात है। अतीन्द्रिय ज्ञान जिसको प्राप्त होगा वो गारंटी से अतीन्द्रिय सुख वाला है, और जिसे अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है उसे अतीन्द्रिय सुख भी नहीं है। अब शुरू की तीन पंक्तियों में कैसे है हेतु से बताते हैं। देखो, चारों ओर से, यह ना सर्वांग से का अर्थ है, चारों ओर से स्वयं उत्पन्न होने से, अनंत पदार्थों में विस्तृत होने से, विमल होने से, अवग्रादि से रहित होने से, प्रत्यक्ष ज्ञान एकांतिक सुख ही है। ये इतने पांच हेतु दिए, चारों ओर से स्वयं उत्पन्न होने से, अनंत पदार्थों में विस्तृत होने से, विमल होने से और अवग्रहादि से रहित होने से, ये पांच विशेषण दिए हैं, तो प्रत्यक्ष ज्ञान एकांतिक सुख है। यह निश्चित, एकांतिक माने वो सुख ही है सर्वथा, उसमें ऐसा कथनचित नहीं लगेगा कि कथनचित सुख है कथनचित दुख है। जैसे मन लगाते हैं कि जीव कथन से सुखी है कथन से दुखी है, संसार में रह रहा है और मुक्ति में सुखी है, संसार की अपेक्षा दुखी है, अथवा जो अभी मोक्ष के मार्ग में चल रहा है तो जितनी कसाओं का अभाव हो गया उतना सुखी है, और जिन कसाओं का उदय अभी विद्यमान है इतना दुखी है, वो अपेक्षाएं लगाते हैं। तो वो कोई अपेक्षा नहीं लगाना, तो एकांत से सुखी ही है। ऐसा एकांत से लगाने से एकांत नहीं हो जाएगा। जब लगता है हम जैन धर्म अनेकांतवादी हैं और वो एकांत नहीं मानते हैं, तो ऐसा दोष इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि एकमात्र अनाकुलता ही सुख का लक्षण है। सुख का लक्षण अनाकुलता है। ये तो अपने सड़ला से शुरू हुआ था, तो बराबर हर शास्त्र में आता ही जाता है ना, सुख आकुलता बिन कहिए प्राकुलता सिम्माहीनता थे सिम्मा के लागे होते, वहां से शुरू हुआ था और हर शास्त्र में बार बार ये बात आती है। अब इसको ही नेगेटिव कह रहे हैं कि वो परोक्ष ज्ञान क्यों नहीं है ऐसा सुख, पर से उत्पन्न होने से पराधीनता के कारण, पर से उत्पन्न होता है इसलिए वो पराधीन हो गया, असम्मत होने से माने वो चारों ओर से नहीं होता है, होने से अन्य द्वारों से आवृत होने के कारण, माने एक द्वार वाणी से आंख से खुला है तो यहां से सब बंद है ना। एक तरह से मान लीजिए अपना घर है तो चारों तरफ से खुला हो, चाहे जहां से बाहर निकल जाओ, और एक बजे एक ही दरवाजा हो, है ना, तो उसका एक ही दरवाजा है। मात्र कुछ पदार्थों को जानने से, उसके बाद ही वो कुछ पदार्थों को जानेगा, सबको नहीं जानेगा। तो अन्य पदार्थों को जानने की इच्छा के कारण अभी दुखी है वो, क्योंकि अनंत भगवान को सबको एक साथ जान लिया और किसी को जानने की इच्छा नहीं है, तो डबल इंतजाम हो गया ना। ये कदाचित वो सबको नहीं भी जानते तो भी दुखी नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्हें किसी को जानने की इच्छा नहीं है, और किसी को जानने की इच्छा भी होती तो भी दुखी नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनको सबको जानते हैं प्रति समय, तो इच्छा की पूर्ति हो जाती। लेकिन दोनों बातें हैं, इच्छा है नहीं और सर्वांग से जानते हैं, और यहां दोनों बातें हैं दुख के लिए। इच्छा सारी दुनिया को जानने की है और जानते बहुत लिमिटेड को है ना। समल होने के कारण, असम्यक अवबोध के कारण, असम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान के कारण, पर अवग्रहादि सहित होने से क्रमशः होने के कारण, पदार्थ क्रमशः पदार्थों का ग्रहण होने से छेद के कारण परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुल है, इसलिए वह परमार्थ सुख नहीं है। पर उसी को उल्टी करने में तीन की चाल लेने होगी। अब यदि हम इसे ऐसे रटना, ये नहीं, इसको हम पहले वे पांच कारण ऊपर के समझें, अपने उपयोग में बैठा लें, फिर उन्हीं पांच से उसके उल्टे पांच बनाएं, पर अपनी भाषा में बनाकर ये बना दें, तब समझ लो कि हमारी समझ में ये पूरी तरह से आया और हम इसमें व्यवस्थित हुए। क्या निष्कर्ष बात इतनी ही है कि प्रत्यक्ष ज्ञान अनंत सुख का कारण है और परोक्ष ज्ञान अनंत सुख का कारण नहीं है, असली सुख उसके द्वारा पैदा नहीं होता। आगे यह प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्णतः अनाकुल है, अभी कहते आकुलता दुख है, और इसलिए चूंकि परोक्ष ज्ञान वाले की आकुलता मौजूद है और प्रत्यक्ष ज्ञान वाले की आकुलता नहीं है, इसलिए वे सुखी हैं। तो अब अनाकुल का क्या स्वरूप है, वो सब उसी बात को अनाकुल पर जोर देकर के समझा रहे। यह प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्णतः अनाकुल है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष ज्ञान अनादि ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव पर महाविकास से व्याप्त होकर स्वतः स्वयं से उत्पन्न होने से स्वाधीन है, समस्त आत्म प्रदेशों से प्रत्यक्ष ज्ञान उपयोग होकर व्याप्त होने से इसके सभी द्वार खुले रहते हैं, समस्त वस्तुओं के गयाकारों को सर्वथा पी जाने से परम विविधता में व्याप्त रहने से अनंत पदार्थों में विस्तृत है, इसलिए सर्व पदार्थों की जानने की इच्छा का अभाव है। सकल शक्ति को रोकने वाले कर्म सामान्य से निकल जाने से अत्यंत स्पष्ट प्रकाश से प्रकाशमान स्वभाव से व्याप्त होने से विमल है। इस कारण सबको सम्यक रूप से जानता है तथा जिन्होंने अपने त्रैकालिक स्वरूप को युगपद समर्पित किया है ऐसे लोकालोक में व्याप्त होकर रहने से अवग्रहादि से रहित है, इसलिए होने वाले पदार्थ ग्रहण के खेद से रहित है। इस प्रकार उपयुक्त पांच कारणों से प्रत्यक्ष ज्ञान अनाकुल है और इसी कारण प्रत्यक्ष ज्ञान पारमार्थिक सुख स्वरूप है। अब इसमें भी वही की वही बात रिपीट की है, बस और कुछ विशेषण बढ़ा दिए हैं। पहले तीन लाइन में बात कही थी वो कॉमन थी, फिर ये चार लाइन में बात कही और फिर इन चार लाइन को उलट करके ये फिर वो बताया पारमार्थिक सुख। उसमें जो एक एक विशेषण है उसकी सकारणता सिद्ध की, जैसे उनकी विमल है तो पहले कह दिया था कि कर्म मल से रहित होने से विमल है, अब यहाँ कह दिया चार घातिया कर्म, मतलब और दो तीन विशेषण लगा दिए और उसको कुछ नहीं है। एक दफे उपयोग में शांति से पढ़ लो तो पूरी बात ख्याल में आ जाएगी, ज्यादा व्याख्यान की इसमें कोई जरूरत नहीं है। प्रथम तो यह अतीन्द्रिय ज्ञान स्वाधीन है, इस कारण अनाकुल है। दूसरे उसके जानने के संपूर्ण द्वार खुले हैं, इस कारण अनाकुल है। तीसरे सभी पदार्थों को जान लेने से किसी को भी जानने की इच्छा न रहने से अनाकुल है। चौथे सभी को संशयादि रहित जानने के कारण विमल होने से अनाकुल है। और पांचवें सभी को एक साथ जान लेने के कारण क्रमशः होने वाले पदार्थों के ग्रहण से होने वाले खेद से रहित होने के कारण अनाकुल है। इस प्रकार पांच कारणों से अनाकुल होने के कारण प्रत्यक्ष ज्ञान परमार्थता सुख स्वरूप है। अब इसमें क्या किया है, मान वही जो विषय है उसको बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से अपनी भाषा में रख दिया। अनाकुल है कौन, अनाकुलता तो सुख का अतीन्द्रिय सुख का लक्षण है। फिर यहाँ अतीन्द्रिय सुख को पिछले को दोनों को एक कहा था और फिर इसमें भी विशेषण लगा करके उसको पांच तरह से अनाकुल सिद्ध किया और वो विशेषण जो लगाए हैं वो विशेषण को खुलासा किया है कि विमल होने से ऐसे होने से ऐसे होने से, तो उनकी सारी व्यक्ति करके उसे पूरा समेट के ये जो अपन ने समझ लीजिए इतनी बड़ी टीका है संस्कृत की, ये हिंदी में भी अपन ने पढ़ी थी, ये सब का ये पांच छह लाइनों में बहुत पॉइंट बार पहले एक नंबर पर इसलिए अनाकुल है, दूसरे इसलिए अनाकुल है, तीसरे इसलिए अनाकुल है, चौथे इसलिए अनाकुल है, पांचवें इसलिए अनाकुल है सिद्ध किया है। इसके विरुद्ध परोक्ष ज्ञान पराधीन होने से आकुलतामय है, अन्य द्वारों से अवरुद्ध होने के कारण आकुलतामय है, पूर्ण ज्ञान न होने से शेष पदार्थों को जानने की इच्छा के कारण आकुलित है, समल होने से संसादि के कारण आकुलित है, अवग्रहादि पूर्वक जानने से कारण क्रमशः जानने के खेद से आकुलित है। इस प्रकार उक्त पांच कारणों से परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुलित होने से सुख स्वरूप नहीं है। इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान अतीन्द्रिय सुख स्वरूप होने से उपादेय है और इंद्रिय ज्ञान रूप परोक्ष ज्ञान सुख स्वरूप नहीं होने से हेय है। फिर इसे रिपीट कर दिया, क्या है, क्या अर्थ करें, बोले इसका पढ़ो शांति से तो तीन दफे में तो याद हो जाए, तीन दफे रिपीट हो गए वही वही की वही बात आ गई। आप लोगों की सरलता के लिए ही ये बार बार ऐसा रिपीट करके लिखा है। विगत गाथा में जोर देकर यह कहा है अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान पारमार्थिक सुख स्वरूप है। और अब इस गाथा में उक्त कथन में आशंका व्यक्त करने वालों का समाधान कर रहे हैं। इस गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद देव स्वयं लिखते हैं कि केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा खेद हो सकता है, इस कारण केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं है। अब इस मान्यता का खंडन करते हैं। अभी भी वही विषय चला रहे हो कि तुम कह रहे केवल ज्ञान को ये पांच प्रकार से आकुलता नहीं है, पूरी तरह निराकुल है, इसलिए वो अनंत सुख स्वरूप है। इसलिए ज्ञान और सुख एक ही बात है, चाहे अनंत सुख कहो चाहे अनंत ज्ञान कहो, एक ही बात है। फिर भी कोई कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान में भी आकुलता है। तो वो सिद्ध करते हैं कि केवल ज्ञान में आकुलता नहीं है। पढ़ो अगली गाथा।
तम सौखम परिणाम च सूचैव खेदो तस्य न वणिदो जम्मागादी कयम् जान। अरे केवल ज्ञान सुख परिणाममय जिन भर का क्षय हो गए गातियारे खेद भी उसके नहीं।
क्या कहा? दो बातें कह दी। भगवान ने ये बात कही है कि केवल ज्ञान के पंच मात्र भी आकुलता नहीं है, वो पूरा सुख है। और आकुलता के उत्पादक जो अंतरंग निमित्त है ना, घातिया कर्म, विचारों कर्म, घातिया कर्म का अभाव हो गया है, इस कारण कोई भी आकुलता का कारण वहां विद्यमान नहीं रहा। वास्तव में हम इन दोनों बातों के लिए आगम पर आधारित हैं। कौन? घातिया कर्म का अभाव हो गया है और अरहंत भगवान ने कहा है। यानी ये दोनों हेतु दिए ना इस गाथा में। कौन से हेतु है? आगमासत, माने ये दोनों बातें हमने आगम से जानी हैं। यदि हम आगम को नहीं मानते हैं तो दोनों हेतु साबित नहीं होते हैं। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष के रूप में कह दिया तो केवल ज्ञान होने के बाद तुम बिल्कुल भी कल्पना मत करो कि उन्हें रंच मात्र भी दुख होगा, क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि केवल ज्ञान के साथ जो सुख होता है उसमें रंच मात्र दुख नहीं होता। और उसका जो प्रतिबंधक कारण घातिया कर्म का उदय था, वे घातिया कर्म का क्षय हो गया है, माने उपशम वगैरह नहीं हुआ, क्षय उपशम नहीं हुआ, क्षय हो गया है। इसलिए अब कभी भविष्य में भी किसी भी प्रकार से उसके उदय होने की संभावना नहीं है। यह यहाँ केवल ज्ञान के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि खेद क्या है, परिणाम क्या है, और केवल ज्ञान में वितरेक क्या है कि जिसके कारण केवल ज्ञान को एकांतिक सुखत्व न हो। देखो आचार्य अमृतचंद टीका में लिखते हैं। अभी फिर मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि अपने 53 गाथा से अपना सुखाधिकार शुरू हो गया है, 52 गाथा पर ज्ञानाधिकार खत्म हो गया था, अपन 7वीं गाथा पे आ गए हैं। अब बिल्कुल ज्ञान की ही चर्चा चल रही है। क्यों? क्योंकि सुख को वे कहते हैं ज्ञान की बात कहे बिना हम सुख की बात कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी दुख हैं वो तो ज्ञान के अभाव में ही होते हैं। अब जब ये केवल ज्ञान की बात शुरू होगी ना, और जब सीधे सुख दुख की बात चलेगी तो मामला पलट जाएगा। फिर ये कहेंगे कि इंद्र भी सुखी नहीं है, चक्रवर्ती भी सुखी नहीं है, उसकी इतनी भोग सामग्री है फिर भी उसके दुख है। फिर मतलब उसका वैसा स्वरूप बता रहे हैं ना केवल ज्ञान का, ऐसा नहीं बताएंगे। वो उनके दुख नहीं है, फिर ए रामायण शुरू करेंगे हैं। और जिसे हम सुख कहते हैं ना, वो भी आपने पाठ में जो बोली थी, त्रेसठ गाथा से है। नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दबदाह से पीड़ित रहे सह सके ना। जो विषय सुख में लीन हैं वे हैं स्वाभाविक दुखी जन, दुख के बिना जिस विषय में व्यापार हो सकता है। मतलब ये जो दो असली जब ज्ञान से छुट्टी मिली तो जो सुख की चर्चा हुई तो वह संसार में सुख नहीं है, फिर ये कहना शुरू कर दिया। मन सुख को अकेले सुख के रूप में परिभाषित नहीं किया, अकेला अनाकुलता रूप सुख है, और वो आकुलता काय के कारण होती है हम नहीं जानते हैं, कम जानते हैं, ज्ञान में बाधा हो, जानने की इच्छा हो और नहीं जाने, इच्छा हो तो इच्छा भी नहीं रही और ये जानने का भी पूरा हो गया तब कोई कारण दुख का रह नहीं जाता है, तो इसलिए वो सब ज्ञान के ही माध्यम से वो बात समझाते रहे हैं। अभी साठवीं गाथा चला रहा है, यहां केवल ज्ञान के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि खेद क्या है, परिणाम क्या है। वो कहते हैं वे रंच मात्र भी खेद नहीं है, तो खेद का स्वरूप बताओ, परिणाम का स्वरूप बताओ, केवल ज्ञान और सुख में वितरेक क्या है, माने भेद क्या है, अंतर क्या है, उल्टापन क्या है, जिसके कारण केवल ज्ञान को एकांतिक सुखत्व तो ना हो। वे कहते हैं तुम बताओ कोई कारण, हम बता रहे कि ये कारण है जिसकी वजह से वो सुखी है। अब कोई दुखी का दुख का कारण होना चाहिए ना, यदि किसी प्रकार का कोई खेद हो तो वे दुखी होंगे, यदि उनमें व्यतिरेक हो सुख से तो भी दुखी होंगे। अब जो प्रश्न उठाए थे ना पीछे, उन सब के उत्तर दे रहे हैं। प्रथम तो खेद के आयतन घाती कर्म है, बस वही बात है, घातिया कर्मों का अभाव हो गया है। खेद क्यों होता था, क्योंकि घातिया कर्म है ना। खेद के आयतन माने घर, घाती कर्म है, केवल परिणाम नहीं, केवल अपने भाव नहीं। घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से धतूरे की भांति अतत में तत्बुद्धि धारण करा के आत्मा को गे पदार्थों के प्रति प्रणमन कराते हैं, माने गे अर्थ प्रणमन कराते हैं। वो तो पीछे आया था ना गे अर्थ प्रणमन, एक ज्ञप्ति क्रिया रूप प्रणमन और एक गे अर्थ प्रणमन। तो गे अर्थ प्रणमन वाले को खेद होता है, तो ज्ञप्ति क्रिया वाले को खेद नहीं होता है। तो वो कहते हैं क्या करते हैं कि घातिया कर्म जो है वो महामोह के उत्पादक है। तो महामोह के उत्पादक है मतलब वही ने तीन घातिया पर तो ध्यान नहीं दिया, मोहिनी कर्म रूप जो घातिया है वो महामोह का उत्पादक होने से। और वे क्या कराते हैं, तो महामोह कौन सा मोह है, क्यों क्यों है दर्शन मोह है, मैं सुनता नहीं, और धीरे से बोले चलेगा। हाँ देखो 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 उसमें देखो, हाँ तत्व में अतत बुद्धि कहलाते हैं, मान जो वह है उसमें ये नहीं है, मान लो जो शरीर है वो तत्व उसमें अतत बुद्धि के मैं नहीं, जो आत्मा है वो मैं नहीं हूँ, शरीर में हूँ, ऐसे तत्व में अतत बुद्धि कराते हैं, है ना, देखा ना, धारण करा के आत्मा को गे पदार्थों के प्रणमन कराते हैं, मान गे पदार्थों को जानने के लिए प्रेरित करते हैं, गेयास प्रणमन कराते हैं। मान लो वो मोह नहीं होता और उन्हें गेयों को जानने की इच्छा नहीं होती, इच्छा तो माने वही मोह है ना, तो नहीं जानते क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उन्हें जानने की इच्छा है और जान नहीं रहे हैं तो डबल डबल है ना, इसे अनंत दुख कराते हैं। खेद का कारण क्या है ना, तो घातिया कर्म के उदय से जो मोह में इसके कारण इच्छा है और उतना ज्ञान का विकास हुआ नहीं है, इस कारण वे घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित तो होकर थकने वाले आत्मा के लिए खेद के कारण होते हैं। घाती कर्मों का अभाव होने से केवल ज्ञान में खेद कहाँ से होगा। वो क्या कह रहे हैं कि वो सब पदार्थों को जानने की इच्छा अनंत वीर है नहीं, तो इसको जानते फिर इसको जानते फिर इसको जानते, अब इसकी पूछा इच्छा पूर्ति करने के लिए सबकी तरफ दौड़ते हैं। टोडरमल जी की भाषा में कहें तो झपट्टा मारते हैं, है ना। सबको जानने की इच्छा है और उतना शक्ति है नहीं, तो इसलिए वो खेद उत्पन्न होता है। घाती कर्मों का अभाव होने से केवल ज्ञान में खेद कहाँ से होगा, इसलिए क्षेत्र ज्ञान वालों को खेद होता है। देखो अपन लोग हैं ना, घंटा दो घंटा पढ़ते रहते हैं, थक जाते हैं कि नहीं थक जाते हैं? क्यों क्यों थक जाते हैं? क्यों जानने की इच्छा है, और जो भी ज्ञानावरणी कर्म का वीर अंतराय कर्म का उदय है तो शक्ति एक लिमिटेड है। अकेली यही शक्ति नहीं, आत्मा की शक्ति तो है ही, पर साथ में आंख की भी, हर एक चीज की मर्यादाएं तो है ना सीमित, हमारे काम करने की भी कहते ना कि मर्यादा तो है ना, उसके बाद में उसे आराम चाहिए, तो वो खेद होगा। ज्ञान तो अनंत को जानने का इच्छा है, सबको जानने का है, एक साथ जानने की इच्छा है, और निरंतर जानते रहने की इच्छा है। लेकिन ये अनंत वीर की कमी के कारण, दर्शन मोह के कारण ये संभव नहीं है। देखो एक उदाहरण दिया जे, इसमें उदाहरण यह धतूरे की भांति है, दूसरे चित्रित दीवार की भांति, त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों के गेयाकार रूप अनंत स्वरूप स्वयं परिणमित होने से केवल ज्ञान स्वयं ही परिणाम है। इस कारण अन्य परिणाम कहाँ से है कि जिसके खेद की उत्पत्ति हो। वो कहते हैं उदाहरण दिया था कि दीवार पर एक चित्र बना है और उसमें 24 ही बनी है, जिसमें भूतकाल के तीर्थंकर भी बने हैं, भविष्य काल के भी बने हैं और वर्तमान के भी बने हैं, तो उनको सीधा एक साथ डायरेक्ट जान लेता है ना। ऐसा ज्ञान त्रिकाल के सारे पदार्थों को एक साथ जान लेने का के रूप परिणमित हो जाता है, तो उसको एक एक को जानने रूप परिणमित होने की आकुलता नहीं होती है। प्रथम दूसरा फिर तीसरा आना नंबर, तो रमन जी यदि लिखते तो कैसे लिखते बताओ, इन तीनों का लिखते पुनश्च तो अनुवाद करने वालों ने लिखा है, वे तो बहुरी लिखते, बहुरी बहुरी बहुरी, बस वे बहुरी, पैरा चेंज करना हो तो बहुरी, फिर पहली बात ये, फिर दूसरा हो तो बहुरी। ये जो बहुरी का पुनश्च अनुवाद जो उन्होंने खड़ी बोली में किया ना, उनने किया है। मैंने एक दफे वहां करके बताया था गुरुदेव के सामने कि इसका अनुवाद ऐसा होना चाहिए, कैसा कि भले ही वहां बहुरी बहुरी एक ही शब्द का प्रयोग है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि पहली बात तो ये है, दूसरी यह है, तीसरी यह है, चौथी यह है। क्यों कि वो चार कारण दे रहे हैं, और चार कारण दे रहे हैं, एक कारण की बात खत्म करते हैं फिर दूसरा कारण देते हैं। लोग बहुरी से उनको पैरा चेंज करना हो तो भी बहुरी का उपयोग करते थे, हर काम के लिए पहले काम, और एक विशेष शब्द का बहुत प्रयोग करते थे, वो पर्याय के अर्थ में करते थे, और फिर प्रदेशों की अपेक्षा विशेष, पर्याय की अपेक्षा विशेष, गुण भेद की अपेक्षा विशेष, इनमें सब विशेष हैं, तो है ना। जैसे असंख्य प्रदेश की आत्मा सामान्य है, असंख्य प्रदेश विशेष है, अनंत गुणात्मक आत्मा सामान्य है और अनंत गुण विशेष है, अनंत पर्याय का अखंड आत्मा सामान्य है और एक एक पर्याय विशेष है, ऐसा तो दृढ़ गुण पर्याय शब्द के लिए वो विशेष शब्द का प्रयोग करते थे भेद के अर्थ में। तीसरे वह केवल ज्ञान समस्त विभाव समस्त स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण, अब स्वभाव के प्रतिघात के कारण घातिया कर्म थे, पहले बताया ना कभी मैंने कि अघातिया कर्म तो सब संयोगों में निमित्त होते हैं, वे आत्मा के स्वभाव का घात नहीं करते हैं, है ना। तो ये आत्मा के घात स्वभाव को प्रतिघात करने में निमित्त होने वाले कर्म का अभाव होने से, निरंकुश अनंत शक्ति के उल्लेषित होने से, जो अनंत शक्ति अंदर उनकी विद्यमान थी ना, तो उस पर घातिया कर्म के उदय से अंकुश लगा था, है ना। कि इतना छोपन है तो इतना ही जानने में आएगा, इतना नहीं है तो इतना नहीं आएगा। अब वो निरंकुश हो गया, केवल ज्ञानी के ज्ञान निरंकुश हो गया। अभी अपन को लोक में जिस तरह होता है ना, निरंकुश शब्द का अर्थ अच्छा अर्थ में नहीं माना जाता है। जब कोई उद्दंड हो जाता है तो कोई किसी की मानता नहीं है, तो अपन कहते हैं कि अभी कोई पावरफुल नेता नहीं है ना, तो सब नेता निरंकुश हो गए। जिसके मन में आता है जो कहता है, हैं? जैसा अच्छा कोई आदमी यहाँ पर प्रशासक नहीं है, इसलिए सब विद्यार्थी निरंकुश हो गए हैं, कोई किसी का सुनता नहीं है। भाई एक आध दो को निकालो, सब ठीक हो जाएंगे, है नहीं ना। निरंकुश तो ऐसे यहाँ लगता है कि जो निरंकुश हो गया है कौन, केवल ज्ञान। मैंने किसी को सबको जानने में जो अंकुश तो काल का लगता था, घात किया कर्म, मैंने लोक में ये अंकुश शब्द जो है वो तो अच्छे अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता, और यहाँ जो निरंकुश होना ये अच्छे अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। अब कि उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, निरंकुश अनंत शक्ति के उल्लेषित होने से समस्त त्रैकालिक और लोकालोक, ये तीन काल और तीन लोक अलोकाकाश सहित, माने क्षेत्र और काल इन दोनों की बात है। क्षेत्र माने असंग प्रदेश है ना ये, और काल माने वो अनादि अनंत पर्याय। तो क्षेत्र काल के आकार में व्याप्त होकर कूटस्थतया अत्यंत निष्कंप है, माने बदला बदली नहीं है, कंपन नहीं है उसमें, ख्याल में है ना। इस कारण आत्मा से अभिन्न सुख लक्षण भूत अनाकुलता को धारण करता हुआ केवल ज्ञान स्वयं ही सुख है। इसलिए केवल ज्ञान और सुख का वितरेक कहाँ है, माने उन दोनों में भिन्नता कहाँ है। वितरेक माने ये हो तो वो नहीं हो, वो नहीं हो तो ये नहीं हो, इसका उसमें अभाव, उसका इसमें अभाव, है ना। तो कहते दोनों एक ही हैं, इसलिए इनमें कोई अभाव नहीं है। उन पूरी निरंकुशता उसके अंदर, अरे निरंकुश ज्ञान है तो सुख भी निरंकुश है। अब फिर वो अलग अलग ज्ञान गुण है, कहीं मान लेंगे तो अनंत गुण नहीं रहेंगे, तो वो अपेक्षा इसमें भी जुदे जुदे हैं। ये अपेक्षा भी उतनी ही मजबूत है, ये कोई व्यवहार से औपचारिक नहीं है। उनकी भिन्नता भी उतनी ही मजबूत है और अभिन्नता भी उतनी ही मजबूत है। ये कभी भिन्न भिन्न किए नहीं जा सकते हैं। जैसे एक ही आत्मा में दोनों है ना, तो दोनों का आश्रयभूत आत्मा एक ही द्रव्य है, इसलिए उन्हें कभी भिन्न भिन्न किया नहीं जा सकता। जो असंख्य प्रदेश ज्ञान गुण के हैं, जिन असंख्य प्रदेशों में ज्ञान गुण रहता है, उन्हीं असंख्य प्रदेशों में सुख गुण रहता है। इसलिए वो बिल्कुल अभेद, अभेद भी बहुत मजबूत है और दोनों का स्वभाव अलग अलग है, इसलिए भिन्नता भी उतनी ही मजबूत है। माने ये औपचारिक नहीं है, यदि कुंद कुंद की भाषा में कहें तो एक घी के घड़े जैसा मामला नहीं है। और राजा में, नगर में राजा निकला, और राजा तो अकेला है, सेना सहित निकला, तो जो उदाहरण व्यवहार नए के लिए दिए हैं कुंद कुंद ने, वे कोई उदाहरण यहाँ लागू नहीं होंगे। फिर भी भेद को व्यवहार तो कहेंगे, लेकिन वो गुण भेद है बस, वही आया ना, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। तो मैंने ये सद्भूत वाला व्यवहार आएगा लागू, वो असद्भूत वाला घी के घड़े वाला व्यवहार यहाँ नहीं लागू होगा। तीसरे हो गया, इसलिए यह सर्वथा अनुमोदन करने योग्य है कि केवल ज्ञान एकांतिक सुख है। माने पक्का निर्णय कर लो, अंदर से पक्की अनुमोदना करो कि केवल ज्ञान एकमात्र सच्चा सुख है, और दूसरी जगह सुख नहीं है। देखो ज्ञान का तो स्वरूप बताया बहुत विस्तार से, जानना बहुत जरूरी भी है, उसके प्रति हमारी आस्था जागृत हो इसके लिए भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे जगत की व्यवस्था उसी पर, वो करता नहीं है लेकिन जानता तो वो ही है ना। देखो सारी लोक की व्यवस्था पूर्णतया व्यवस्थित है और इसे न ज्ञान ने किया है और न कोई किसी दूसरे द्रव्य को करने की जरूरत है, लेकिन जानने की जरूरत केवल ज्ञानी तो जानते ही है, उनको तो है ही, लेकिन अपन को भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना बहुत जरूरी है कि वस्तु के जो प्रणमन व्यवस्था है यदि उसे हमने नहीं जाना और ऐसा नहीं जाना कि बिल्कुल हमारे चित्त में किसी प्रकार की शंका नहीं रहे, बिल्कुल निशंक होकर हमें को ज्ञान का गेव नहीं बना, तो हमारा उपयोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था करने में उलझा ही रहेगा। क्या वो ठीक है, शास्त्र में लिखी है और सारी दुनिया सब व्यवस्थित ही है, बरसात समय पर ही होगी, सूरज सुबह 6 बजे उगता है तो उग जाएगा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम तो सिर्फ इतनी चिंता करो कि हमको 6 बजे उठना है, तो तुम अपने उठने की चिंता करो, तो सूरज नहीं उठा और वो नहीं आया तो क्या हो, दो तरह की चिंता हो गई ना, एक सूरज उगे तो सब विद्यार्थियों को उठ जाना चाहिए सूरज उगने के पहले। बाबू भाई तो ऐसे मजाक उड़ाते थे कि ये लोग तो सूर्यवंशी लोग हैं, कि कैसे कि जब सूरज उग जाएगा तब उठेंगे, उनको मजाक में कहते थे, और हम लोग तो वही सूरज उगने के पहले उठने वाले लोग हैं। तो अब दो काम करना है ना, सूरज को उगाना है और अपने को उठना है, तो वो कहते देखो तुम चिंता मत करो, सूरज तो उग जाएगा, जितने बजे उसके उगने का नक्की है वो बिल्कुल उग जाएगा, तुम तो अपनी चिंता करो। अब यहां क्या कह रहे हैं, हम ये समझाना चाहते हैं कि ना तुम्हें सूरज के उगने की चिंता करना है और ना तुम्हारे उठने की चिंता करना है, क्योंकि इतना बड़ा काम यदि सुनिश्चित हो सकता है तो ये इतना सा छोटा काम सुनिश्चित नहीं होगा। अब देखो ये गले नहीं उतरेगा, अच्छों अच्छों को नहीं उतरेगा, और व्यवस्थापक लोग मेरे पास आएंगे साहब ये क्या कर रहे हो आप, हम तो बस ही परेशान हैं, अब और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्यों मैंने मेरे कहने का मतलब यह है हमारे ज्ञान में ऐसा बंटवारा है कि यद्यपि सारा जगत पूरी तरह व्यवस्थित है उसको समझाने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा भी सब कुछ व्यवस्थित है ये समझाना बहुत कठिन है, हम अपने को उसमें अब्बाद रख लेते हैं। जैसे कि आप अपना निमित्त बताते हैं ना, प्रेरणा स्रोत के नाम से हमें उसने प्रेरणा दी, तो तुमको ऐसा अच्छा लगता है कि हम यहां आ गए तो अच्छा हुआ, हमें कोई एक चीज समझने को सुनने को मिल गई जो हमें नहीं मिलती, तभी तो आप उनको याद करते हो ना। यदि तुमको 24 घंटा पछतावा हो कि यहां आके फंस गए, नहीं तो हमें न मालूम कितना बड़ा डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, अमेरिका चला जाता, वहां इतना कमाने लगता, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, तो आपको वही व्यक्ति किस रूप में याद आएगा, ऐसा मत समझो कि उन्हें प्रेरणा दी तो वो तुम्हारा प्रेरणा ही सूत्र होगा, वो तो तुमको यदि ये काम अच्छा लगा तो वो तुम्हें वो प्रेरणा देने वाले की महिमा आएगी, नहीं तो हमको उलझाने वाला फंसाने वाला वो ये ऐसा कहेगा कि इनके एजेंट सारे देश में फैले हुए हैं, इनको ही पता नहीं है, शांति जी को पता नहीं है कौन कौन किस किस को प्रेरणा दे दे के यहां भेजता है, तो ये सब इन्हीं के एजेंट हैं, हम चाहे उन्हें जानते ही नहीं हो, जिन लोगों के तुम नाम लेते हो हमें पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है उन्हें क्या, लेकिन ये एजेंट हैं जो फंसा फंसा करके लाते हैं। यदि ये यहाँ आकर के इसमें हमारी उपादेय बुद्धि नहीं हुई, हे बुद्धि हुई, तो निश्चित रूप से ये सब जैसे चिड़ियों को फंसाते हैं शिकारी, ऐसे फंसाने वाले लगेंगे। आसन ऐसे ही निमित्त का तो ऐसे ही कहना मात्र की बात है, उनने बेचारों ने कुछ नहीं किया है, फिर तुमको उनको एक जगह का ख्याल में था और तुमको पढ़ने की इच्छा थी कहाँ जाए, तुम इस विकल्प में थे तो उसने बता दिया बस खत्म। ना उसको ये चिंता है कि विद्यालय में पूरे विद्यार्थी हो गए कि नहीं हो गए, ये कम है कि अच्छे होशियार विद्यार्थी जाना चाहिए तो इसकी तरक्की होगी, कोई विकल्प नहीं है उन्हें। ऐसे जगत में कोई नहीं। अब हम में सारे जगत को तो व्यवस्थित मान लेते हैं किरमत पर जाएगी हिसाब से, स्किल ज्ञान के हिसाब से, और फिर हम अपने छोटे दायरे को ये तो मुझे करना ही है और अपने माथे पर उसका बोझ लिए फिर है? अपने माथे पर उसका बोझ हम लिए फिरते हैं। अरे ये भी सुनिश्चित है, अनादिकाल से नक्की है, और उस समय पे बिल्कुल ऑटोमेटिक सब होगा, शंका की विकल्प संच मात्र ही बात नहीं है। आत्मा तो सहज ज्यादा दिखता है। मैं आज वो लड़के ने बोला ना समाधि पे, मैं सुन रहा था, अच्छा बोल रहा था, फ्लो में अच्छी बोल रहा था, लेकिन मुझे एक विकल्प आया कि तुम लोग समाधि पर बोलोगे तो मेरी समझ में कम से कम इतना तो आ ही जाएगा कि तुम लोगों में कितना गिरा, तुम्हें समाधि के बारे में हूँ लिखा है तो उसमें से कितना ग्रास्त किया है, कितनी बात सही रूप में पकड़ी है और कितनी बात को हमने सही रूप में नहीं पकड़ पाया है, ये बात तो ख्याल में आई जाएगी, तो इसलिए मेरे को सुनना चाहिए, ऐसा विकल्प मेरे को आया सुनकर जी क्या। और यदि आप लोगों ने 75% भी पकड़ लिया हो, ऐसा मुझे अनुभव होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। कभी जो सवाल इसका नहीं है कि तुम्हारी श्रद्धा में कितना स्वीकृत हुआ और कितना नहीं हुआ, छयोपम ज्ञान में तो आया क्या नहीं, अभी तुम यहाँ पढ़ने आए हो, छयोपम ज्ञान में डालने के लिए आए हो, ये किरमत पर आए तुम मान लो, इसके लिए हम तुम्हें सिर्फ पढ़ा रहे, तुम्हारी समझ में आ जाए कि हम क्या कह रहे हैं इसके लिए पढ़ा रहे, फिर मानना में तुम पूरे आजाद हो, माने हमारी कोई पराधीनता नहीं है, यदि है तो तुम्हारे संसार कितना बाकी है उस पर निर्भर करता है। विदेशी में ऐसा लिखा है कि जिसका संसार समुद्र का किनारा निकट नहीं आया होगा उसको ये त्रिकोणमत पर्याय समझ में नहीं आएगी, समझ में भी आ जाएगी तो स्वीकृत नहीं होगी, तो वो तो उस पर निर्भर करता है ना। इस प्रवचन सार में भी 79वीं गाथा में कि टीका में ऐसा लिखा है कि जिनके संसार समुद्र का किनारा अत्यंत निकट आ गया, निकालो 79 जिसको जिसके महादुख संकट निकट है, ऐसा वह शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है, माने जिसको अभी संसार का अभाव नहीं हुआ है वो इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकता, इसके ज्ञान ही है। महारूप शंकर निकट है लिखा ना, वो महारूप शंकर क्या है? निगोद, हमें जिनको भी संसार बहुत बाकी है, अधोगति की तरफ जिनको जाना है, उनको ये बात समझ में नहीं आती है, और जिनका संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ गया है, उनकी समझ में ये बात आती है। अपन क्या खोज रहे हैं? जिनके संसार दुख का किनारा निकट आ गया है ना, आ जाएगा, यहीं आ जाएगा, अपन जब पढ़ाएंगे पढ़ाते वक्त जी महादुख शंकर निकट है, मैंने निगुद की बात, और फिर जिनके संसार दुख का किनारा निकट आ गया है, उनकी ये समझ में आएगी, जैसे अपन ये बोलते हैं ना कि ये समय दर्शन हो जाएगा छायक, तो वो चार भव में इतने भव में मोक्ष चला जाएगा, यदि ऐसा हो जाएगा तो इतने भव में मोक्ष चला जाएगा, फिर समाधि हो जाएगी तो इतने भव में मोक्ष चला जाएगा, वो ऐसा ही है। ऐसा ये है कि जिसको एक दफे ये बात पूरी तरह से सही रूप में समझ में आ जाएगी, तो अधिक काल तक संसार में नहीं रहता है, और वो बराबर तर्क और युक्ति से सिद्ध होता है, क्योंकि वो द्वारा लौट के निगोद में उधर जाने वाला नहीं है, और मनुष्य के तो आठ ही भव मिलते हैं ना, हैं क्या क्या बोल रहे, क्या जी हम बोलो बोलो निकाल के लाओ। हाँ, जिनके संसार समुद्र का किनारा अति निकट है, जिन्हें साथी से विवेक ज्योति प्रकट हुई है ना, तो जिनके संसार समुद्र का किनारा अति निकट है, उनको ये बात समझ में आएगी, ये पक्की बात समझना, है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो काललब्धि वाला कारण है ना। हम लोगों का काम, अध्यात्मों का काम, तो सिर्फ जो विषय है वो समझा देना हमारी ड्यूटी है, तुम्हें समान दृष्टि बनाना हमारी ड्यूटी नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए वस्तु का स्वरूप, फिर वो तुम्हारे उस पर निर्भर है, तुम और क्या निकालने वाला है। चलो भैया, जिसका अनंत संसार शेष होगा वह तो भड़केगा ही, हमने तो किसी को भड़काने के लिए कुछ नहीं लिखा, जो कुछ भी लिखा है समझाने के भाव से ही लिखा है, फिर हमने किसी को नामोल्लेख तो नहीं किया, फिर भी कोई अपने माथे पर ले ले तो हम क्या कर सकते हैं। अब छोड़ो भी इस बात को, इस चर्चा में अधिक समय लगाना अभीष्ट नहीं है। ये ऊपर प्रश्न था ना, यदि ऐसा है तो आपने इतना क्यों लिखा, विकल्प आया तो लिख दिया, जो यही कहा वो अगर उनके मुंह सेना का मतलब वही वही प्रसंग है, बात वही की वही है जो कहना चाहते हैं, सब अपने अपने दिमाग ही ढूंढ के लाते हैं, सब इस रुचि वाले हैं इसलिए अब समझते हैं, अच्छा लक्षण है मैं क्या। तो आप लोग समझ जाएं इस तत्व ज्ञान को, वो बात पूरी हो गई। क्यों कि यदि हमारा उद्देश्य आपको सम्यक दृष्टि या सम्यक चारित्र बंध बनाना होता कि हो गए, तो फिर सबको ही बनाना चाहिए, फिर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने इसको बनाया इसको नहीं बनाया, बना सकते हो तो समझाते तो सभी को ही है ना, ये तो कोई नहीं कह सकता है ना कि साहब इनने इनको अच्छा समझाया, शांति जी ने समय साहब इनको अच्छा पढ़ाया, यदि अच्छा पढ़ाया है उनने तो उसका मतलब है कि वो अच्छे पढ़े हैं, रोजाना उपस्थित रहे, समय पर आए, ध्यान से सुना, तो पढ़ने में तो अच्छा बुरे का भेद हो सकता है, पढ़ाने में तो नहीं हो सकता, क्यों पढ़ा तो वे सबको एक साथ ही रहे है ना, इसलिए आप ऐसे पक्षपात का आरोप तो नहीं लगा सकते कि हमें पढ़ाने में कसर रखी, आपने पढ़ने में अंतर डाला है, तो पढ़ने में अंतर डाला है उसकी उपलब्धि उसके हिसाब से होगी, आपने अत्यंत रुचिपूर्वक श्रद्धापूर्वक आपको वो स्वीकृत हुआ तत्व ज्ञान, तो आपको सम्मान दर्शन भी हो सकता है, और वो ही बात सुन सुन करके, ये तो यहां की बात जाने दो, समूह शरण में भी हजारों जीव लाखों जीव एक साथ सुनते हैं और बहुत लिमिटेड जीवों को होता है समय दर्शन। लिमिटेड जीव मोक्ष के मार्ग में होते हैं, भले ही ऐसे गिना देते हैं कि उनके तीर्थंकर काल में इतने गए इतने गए इतने गए इतने ऐसे इतने ऐसे, फिर अंत में ये भी बांध देते हैं 6 महीना और 8 समय में 600 जीव ही मुक्त जाएंगे, तो आखिरकार रिजल्ट क्या निकला है? महिमा तो वैसी महिमा गिनाने ऐसा लगता है जैसे लाखों चले जाएंगे और लाखों हो गए तो सबका कल्याण हो जाएगा, ख्याल में है ना? जैसे अपने 700 निकल गए, 750 निकल गए तो क्या हो गया? साथ निकले यार, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन 700 लोगों को ये तत्व ज्ञान के घर तक पहुंच गया ना, और उनके घर तक पहुंच गया तो उनके परिवार तक पहुंच गया। वो परिवार इस तत्व ज्ञान की श्रद्धा वाले नहीं थे, लेकिन अब 5 साल बच्चा यहाँ आके पढ़ा है, देखते रहे हैं, जाना है सब, तो जो जो उल्टी सीधी बातें बताई गई थी वो दिमाग में से निकल गई कि ऐसा तो कुछ नहीं है, ख्याल में आई ना? और फिर वो तत्व ज्ञान के प्रति प्रेम हो गया, तो इतने परिवार बन गए, और फिर उनके रिश्तेदारों पर भी थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही है, अड़ोसियों पड़ोसियों पर, तो मतलब इतने लोगों को हो गया। लेकिन फिर भी ये तो कॉमन बात है, एक दो चार विद्वान भी अच्छे उच्च कोटि के निकल जाएं तो वे फिर इतनी बड़ी क्रांति खड़ी कर सकते हैं, समझे ना? एक ही जैसा निकल जाए कांजी स्वामी जैसा, तो फिर वो कमाल करके बता सकता है, मेरा मतलब समझे कि नहीं समझे? इतने की जरूरत नहीं है। एक बात सुना के खत्म करता हूं, गांधी जी वहां गए बनारस विश्वविद्यालय में, उन्हें खोल दिया था मदन मोहन मालवीय ने सारे जागीरदारों से पत्र लिख लिख करके, स्टेट के राजाओं को चिट्ठियां लिख लिख करके, पैसा इकट्ठी करके हिंदू विश्वविद्यालय खोल दिया था, और मुस्लिम विश्वविद्यालय फिर अलीगढ़ में उन्हीं की टक्कर में, वो ये कौन से थे, एक मुसलमान बहुत बड़े संत थे, वो उनने खोल दिया था। तो उनने पूछा गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय से कि आपने कितने विद्वान निकाल दिए, 10-20 साल हो गए थे उस विद्यालय को चले, कौन? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो उनने बहुत सोचा शांति से, उंगलियों पर गिना, आध घंटे में जवाब दिया कि 3। तो गांधी जी उछल पड़े कि 3 निकाल दिए, गजब हो गया। जबकि वहां पर हजारों विद्यार्थी डिग्रियां लेकर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होकर PhD होकर निकल गए थे, लेकिन उनने 3 ही बताए कि जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे इन लोगों जैसे बड़े लोगों का नाम था, ख्याल में आई ना? इन हमने इन्हें कहा, इन 3 तो बहुत होते हैं, तो यदि ये सारी जिंदगी यहां महाविद्यालय अपना चला और एक भी निकल गया तो वो फिर वो बीज पैदा बचा रहा ना, और फिर वो इतना खड़ा कर देगा। इसलिए कोई तीर्थंकर जैसे थोड़ी हजारों पैदा होते हैं, वो तो रेयर ही होंगे, मेरे समझ गए ना? लेकिन ये 700 के 700 में जो क्वालिटी है ऐसी कहीं होती नहीं है, समझे ना? अब देखो बदल बदल के आप लोग विद्यार्थी लोग बोलते हैं, जितनी रेगुलर उपस्थिति मेरी रहती है सुनने में, यदि मेरे को भी गिने तो पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए, सुनना नहीं देखा होगा क्या? मतलब मैं जितना सुनता हूं उतना शायद ही कोई सुनता होगा, इसलिए सुनता हूं कि मैं देख देख के खुश होता हूं और मेरा विषय भी रिपीट होता है। क्या जब वहां से यहां आता हूं शांति जी ना, तो इतना समय वो विद्यार्थी का प्रयोजन होते होते में आना पड़े तो वो निकल जाएगा विषय मेरा, मैं इतना भी नहीं छोड़ता हूं, जब वो खत्म कर देता है तब मैं वहां से निकलता हूं। रेगुलर यदि आप रहेंगे ऐसा होगा तो बहुत बड़ा काम हो सकता है इस जगत में, होगा तो उतना ही, मेरे कहने का मतलब जितना होना है 6 महीना और 8 समय में से आते हैं।